यरमिया अध्याय 46। अध्याय 45 का आरंभ करते ही हम यरमिया की पुस्तक के छठवें भाग में प्रवेश कर चुके हैं। ये छठा भाग अन्य भविष्यवाणियों का भाग है जो इसराइल के पड़ोसी राष्ट्रों के लिए कही गई भविष्यवाणियों का संग्रह है। अध्याय 46 में हम इन भविष्यवाणियों की श्रृंखला की भूमिका को देखते हैं। यहां वो अन्य जातियों को उनके राज्यों को संबोधित करता है, अतः यहां परमेश्वर उन राष्ट्रों की ओर उन्मुख है जो इसराइल के आसपास है। यरमिया अध्याय 46 पद 1 से लेकर 12 तक। अन्य जातियों के विषय यहोवा का जो वचन यरमिया भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा वो ये है, मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन नीको की सेना जो परात महानद के तीर पर कर कमिश में थी और जिसे बाबुल के राजा नबुकदनेज़र ने योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय, ढाले और फरियां तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोड़ों को जुतवाओ और हे सवारों टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पैना करो, जिल्मों को पहन लो, मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूं। वे विस्मित होकर पीछे हट गए, उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है, ना वेग चलने वाला भागने पाएगा और ना वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में परात महानद के तीर पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। ये कौन है जो नील नदी की नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता है, बड़ा चला आता है? मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वो कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों आगे बढ़ो, हे रतियों बहुत ही वेग से चलाओ, हे डाल पकड़ने वाले कुशी और पूती वीरों, हे धनुधारी लूदियों चले आओ, क्योंकि वो दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वो अपने द्रोहियों से बदला लेगा। सो तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर चक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं की यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोगों ने सुना कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट में भर गई, वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। यहां परमेश्वर करकमिश में परात नदी के पास मिस्रियों की पराजय की भविष्यवाणी दे रहा है। विशेष बात तो यह है कि गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। प्राचीन संसार में गिलाद औषधियों का स्थान माना जाता था। हमने अध्याय 8 में देखा था कि यरमिया कहता है, यरमिया अध्याय 8 पद 22, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद नहीं? मिस्र के लिए चंगाई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंड देगा। मिस्र को दंड देने के लिए परमेश्वर बाबुल को अपना साधन बनाएगा। यही कारण था कि यरमिया अपने लोगों से बार बार कहता था कि वे मिस्र में सुरक्षा खोजने न जाएं। उसने कहा कि यदि तुम मिस्र में जाओगे कि वहां तलवार से बचे रहो, तो निश्चय ही तलवार वहां भी तुम्हारा पीछा करेगी। वहां अकाल और महामारी भी होगी और तुम वही मर जाओगे। तुम अपने देश कभी नहीं लौटोगे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और वे मिस्र पहुंच गए। यहां यरमिया मिस्र के भविष्य को भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रहा है। यहां वो विभिन्न राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी कह रहा है और आज के लोग सोचते हैं कि उसने अमेरिका को अपनी भविष्यवाणियों में क्यों नहीं रखा, क्योंकि अमेरिका भी तो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़े तो ज्ञात होगा कि यीशु का साक्ष्य भविष्यवाणी की आत्मा है। सत्य तो यह है कि सब भविष्यवाणियों का केंद्र यीशु है और इसराइल राष्ट्र यीशु के दोनों आगमन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भविष्यवाणियां इसराइल और उससे संबंधित राष्ट्रों के बारे में ही हैं। अब ये राष्ट्र चाहे इसराइल की भलाई करे या बुराई करे, परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है कि वो सब राष्ट्रों का भविष्य बताए। वो केवल उन राष्ट्रों की चर्चा करता है जो मसीह के प्रथम या द्वितीय आगमन में भूमिका निभाते हैं। जब आप उन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो विभिन्न राष्ट्रों पर परमेश्वर के दंड की ही, तब ये अच्छी ही है कि अमेरिका के लिए उसने कुछ नहीं कहा। नहीं तो मेरा तो विश्वास है कि अमेरिका के लिए वो कठोर शब्दों का ही प्रयोग करता। यरमिया अध्याय 46 पद 13। यहोवा ने यरमिया भविष्यत वक्ता से ये वचन भी कहा कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर क्योंकि आकर मिस्र देश को मार लेगा। ये भविष्यवाणी का दूसरा भाग है। पहले भाग में उसने करकमिश के युद्ध की भविष्यवाणी दी थी जिसमें फिरौन बाबुल द्वारा पराजित किया गया था। इस भाग में वो बाबुल द्वारा मिस्र पर आक्रमण की भविष्यवाणी देता है कि बाबुल मिस्र आकर आक्रमण करेगा और उसे जीतेगा। यरमिया अध्याय 46 पद 14 से लेकर 20 तक। मिस्र में वर्णन करो और मिगदोल में सुनाओ, हां और नोप और तहपनेस में सुनाकर ये कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई। तेरे बलवंत जन क्यों बिलाए गए हैं? वे इस कारण खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो चलो, हम अंधेर करने वालों की तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाएं। वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र का राजा फिरौन सत्यनाश हुआ क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वो राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध जैसे ताबोर अन्य पहाड़ों में और जैसे कर्मेल समुद्र के किनारे हैं, वैसा ही वो आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी ना रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बचिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है, वो आ ही गया है। वो बाबुल से आया। यरमिया अध्याय 46 पद 21 से लेकर 26 तक। उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं वह पोसे हुए बछड़ों के समान है। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए, वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियों लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की ये वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनित हैं। मिस्री कन्या लज्जित होगी, वो उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो मैं नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूं। मैं उनको बाबुल के राजा नेबुकदनेज़र और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा जो उनके प्राण के खोजी हैं। उसके बाद वो प्राचीन काल की नाई फिर बसाया जाएगा। यहोवा की ये वाणी है। मिस्र पर आक्रमण किया जाएगा, वो नेबुकदनेज़र द्वारा जीत लिया जाएगा, परंतु मिस्रवासी वहीं बसे रहेंगे। अंतिम दो पदों में परमेश्वर अपने लोगों को प्रोत्साहन के शब्द कहता है। यरमिया अध्याय 46 पद 27 और 28। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर और इसराइल विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे बरबस निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊंगा। जैसे कि देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर आने वाले दंड की भविष्यवाणी देता है, तब वो इसका अंत इस्राएल राष्ट्र याकूब के घराने के लिए प्रकाश की किरण सा करता है। भयभीत ना हो, वो भविष्य अर्थात परमेश्वर के राज्य के युग के बारे में कहता है। उस समय परमेश्वर फिर उनके मध्य होगा और उन्हें अपने देश में लौटाकर लाएगा। जब परमेश्वर अन्य जातियों को दंड देगा और चाहे वो तितर बितर हो, यीशु के फिर से आने पर भी वे एकत्रित की जाएंगी। तब वो सब जातियों को इकट्ठा करेगा और चरवाहे की तरह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और उनसे जो उसकी बाई ओर होंगे कहेगा। लूका अध्याय 13 पद 27। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। मती अध्याय 25 में लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पीने को नहीं दिया आदि। प्रभु, हमने तुझे कब ऐसा देखा? तुमने इन मेरे भाइयों में से छोटे के साथ जो किया। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि सब जातियों ने इसराइल के साथ कैसा व्यवहार किया और इसी आधार पर सबका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, उत्पत्ति अध्याय 12 पद 3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। यहूदी विरोध एक भीषण कार्य है और उसमें पढ़ना परमेश्वर की संतान के लिए वर्जित है। आज अनेक कलीसियाओं में दुर्भाग्य से यहूदी विरोध व्याप्त है। कुछ लोगों का कहना है कि आज के यहूदी सच्चे यहूदी नहीं हैं। वे इस बहाने को लेकर यहूदी विरोधियों का साथ देते हैं। सब जातियां प्रभु के सामने होंगी और उन्हें इसराइल के साथ अपने व्यवहार का उत्तर देना होगा। परमेश्वर कहता है कि वो समस्त जातियों का अंत कर देगा, वे जहां भी हो, परंतु वो इसराइल का अंत नहीं करेगा। इसराइल मसीह यीशु के राज्य के समय केंद्र बिंदु होगा।